पेज नंबर 98, सीरीज के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आराग्वत की बात मैं भूल रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आराग्वत की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। वह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूला, फूल के खंखड़ भया 7 पलाश। ऐसे दमदारों से तो लंडूर है भले, फूल है शिरीष, वसंत के आगमन से लहक उठता है, अषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, जब उमस से प्राण उबल रहता है, जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लूजे हृदय सूखता रहता है। एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूट भी नहीं है। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगल जनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चहर दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी हैं। बृहत संहिता 55-13 अशोक अरिष्ट पुत्रांग और शिरीष के छायादार और वनम श्रण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखाई दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेंखा दोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि वकुल के पेड़ किसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर हैं, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं है। कवियों का यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिन नर पत्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, मेरा भी है। कहे गए हैं शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पंछियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरश पेलवम शरीर पुष्पम न पुनः पत्रिणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उनका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किस प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं, मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित अति प्रमाणित सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की जड़ निश्चित है, सुनता कौन है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चलाए जा रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कणा थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं तुरंत। प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो, अमे की मरे। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता, न उद्धव का लेना न माधव का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जी जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरल रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ शिरीष के समान थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरल और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनाशक्त अनाबिल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्णात राज को प्री विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को, तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णात राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बाया चरण रखती हूँ। तेषाम मूर्घिनम ददामि वाम चरणम कर्णात्राज प्रिया। मैं जानता हूं कि इस उपालंभ में दुनिया का कोई कवि हारा नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। सीरीज की मस्ती की ओर देखा, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई भी किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अचानक योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे दावेदार को फटकारते हुए कवस्ते कालिदासाद्या, मैंने तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ कहा था, वयम अभी होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकलती थी, विधाता की ओर से कोई कार्पण नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का चित्र बनाया था, लेकिन रह रह कर उनका मन खींच उठता था। उहूं कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए थे जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे शिरीषम गंड विलंबि केशरम नया शरद चंद्र मरीच कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। कालिदास ने यह श्लोक ना लिख दिया होता तो मैं समझता कि वे भी बस और कवियों की भांति कविते सौंदर्य पर मुग्ध, दुख से अभिभूत, सुख से गदगद। पर कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवाल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है, कविवर रवींद्रनाथ में यह अल्पासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यह बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। शिरीष, तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलचिल चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य धूप वर्षा आंधी लू अपने आप में सत्य नहीं? हमारे देश के ऊपर जो यह मार काटता अग्निदाह लूट पाट खून खच्चर का बवंडर बढ़ रहा है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? सीरीज रह सकता है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता है, था क्यों, मेरा मन पूछता है, ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि सीरीज भी अवधूत है। सीरीज वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूँ तब तक हूँ उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है।